Hare Krishna. This prayer, Om Ajnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshul Militan Yena Tasmai Sri Guruve Namah. It's a prayer to the spiritual master. And his only business is to remove the ignorance and bring us to the platform of reality. Guru ki avashyakta हमें परम सत्य का दर्शन कराने की होगी। हम परम सत्य के अंश हैं, इसलिए हम कहते हैं कि हम वी आर रियल, यानी कि हम हैं। हमें कौन नकार सकता है कि हम नहीं है? हम होते हुए यदि कोई नकार करे तो उसमें कुछ ईर्ष्या होगी, तभी कर सकते हैं। कभी पति पत्नी में झगड़ा हुआ है तो यानी कि बोलना बंद हो जाता है और दोनों ऐसे है ही नहीं समझ करके एक ही घर में जी रहे हैं। उसका मतलब क्या है? वो अव्यक्त है। व्यक्त होते हुए भी अव्यक्त मानना, ये ईर्ष्या का कारण। अपने अपने स्वार्थ में हम ऐसे ना समझ होकर झगड़ा माहौल लेते हैं तो उसमें बुद्धि का अभाव है सर्वप्रथम। तो हमारी वास्तविकता जो है, जो परम सत्य के आधार पर है, वो वास्तविकता को समझने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। जो परम सत्य है उसके लिए ही तो शास्त्र में ये विस्तार पूर्वक समझाने की आवश्यकता भी खड़ी हुई है। जो सत्य है उसे नकारना, जानबूझकर आंख होते हुए अंधा होने का प्रयत्न करना, ऐसा कहा जाता है। तो हमारी दृष्टि जैसी भी है, ये चमड़े की आंख कहां तक देख सकती है? वास्तविकता को देखने में असमर्थ है। कई कई लोग भगवान को उसमें भी डार देते हैं। भगवान कहते हैं अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम अबुद्धया। कृष्ण भगवान ये कहते हैं मूर्ख लोग मुझे कहते कि मैं अव्यक्त से व्यक्त हुआ हूं। अव्यक्त तो पता है ना, और व्यक्त पता है, हम व्यक्त हैं, मैनिफेस्टेड जैसे कहते हैं। अव्यक्त यानी अनमैनिफेस्टेड, यानी कि हमारा कोई भूतकाल नहीं है, और मैं भूतकाल में था ही नहीं, ऐसी भ्रमणा हम अभी से क्यों करें? आप लोगों तो बहुत विचार करते हैं, और कई लोग कहते हैं अरे कहीं किसी ने कल देखा है, मरने के बाद कौन जीता है हमें क्या पता है। तो हमारे में काफी बहुत सारी गैर समझ भी है। हम व्यक्त है फिर भी हमें कोई ऐसे अज्ञात अनुभव में हम अपने आप को डाल देना चाहते हैं, और ऐसे आर्ग्यूमेंट करते हैं, विवेचन करते हैं, टीकाएं करते हैं कि अरे भगवान भी जब आते हैं ना तो भी हमारे जैसे ही अव्यक्त थे और अभी व्यक्त हो गए हैं। थोड़ी देर रहकर कुछ लीलाएं करके गए तो क्या हुआ, वो भी हमारे जैसे ही है ना। लेकिन भगवान के मन्यते माम अबुद्धया, बेवकूफ लोग ऐसा मानते हैं, सीधा रोकड़ा हिसाब दे देते हैं, ये सब बेवकूफ है। परम भावम अजानंत मम अव्ययम अनुत्तमम, मेरा दिव्य भाव को न जानते हुए कि जो मैं परम यानी कि सर्वश्रेष्ठ और अनुत्तम, अव्ययम अव्ययम यानी कि मेरा कभी नाश नहीं होता। तो हम फिर भी वहां से लेकर समझते हैं कि चलो नाश होने वाला तो शरीर है, आत्मा थोड़ी नाश होती है। तो यानी कि भगवान का शरीर चला जाता है समझ में आ जाता है, लेकिन वो हमारे जैसे ही थे ना, इसीलिए वो अव्यक्त का यानी कि आत्मा का नाश नहीं होता, तो हमारे जैसी ही आत्मा है। फिर वहां वही गड़बड़ी करते हैं। भगवान कह के मम अव्यय अनुत्तमम, इनका जो अव्यय यानी कि नाश न होने वाला जो स्वभाव है वो उत्तम है, और हमारा नाश तो जबरदस्ती से होता है, इनका नाश कोई जबरदस्ती से नहीं करते। कहीं भी आपने देखा है कि भगवान के अवतार और अवतारें या स्वयं यदि आते हैं तो वो कैसे चले जाते हैं उनका कोई स्पष्टीकरण नहीं मिलता। फिर भी कई ऐसी कथाएं जोड़ के कोई बहाना बनाकर ईर्ष्यालु लोग इनको कहते हैं, हाँ कृष्ण भगवान भी देखो एक जरा नाम का एक शिकारी था, उसने तीर लगाया उनके अंगूठे में घुसा और वो मर गए, शरीर छोड़ दिया, ऐसा बताते हैं प्रभास पाटन में गुजरात में। नहीं नहीं ऐसे मरे नहीं है, न तो उसने पढ़ा है ऐसे। तो यानी कि अलग अलग मान्यता के आधार पर, तो कोई अव्यक्त की पहचान करके उसमें जुड़ना चाहता है तो वो तो बेवकूफ बताए गए। अब व्यक्त हुए बहुत सारे देवता देवियां भी हैं, उनको पकड़ करके भी हम परम सत्य को समझने के लिए लायक नहीं बनते, क्योंकि वहां हम उनको भी व्यक्त मानते हैं, शक्तिशाली है व्यक्त मानते हैं और कहा गया है इसलिए कम से कम हमारी इच्छा तो पूर्ण करेगा। हमारे काम में जो विघ्न आते हैं तो चलो ये विघ्न को हटाने के लिए हम देवताओं की पूजा करते, लेकिन ईशोपनिषद स्पष्टता करता है। ईशोपनिषद में ये कहा है कि अंध तम प्रवेशन्ति ये संभूति उपासते ततोते ये भूयतमो ये असंभूत्यामृता। संभूति और असंभूति, संभूति यानी कि जो प्रकट हुए, असंभूति यानी अप्रकट यानी कि व्यक्त और अव्यक्त, व्यक्त की उपासना और अव्यक्त की उपासना। तो संभूति में देवता लोग आते हैं उसे संभूति कहते हैं, जो प्रकट हुए हैं इनकी उपासना करते हैं किसी भी कारण तो वो अंधतम प्रविशन्ति, अज्ञानता के कमरे में ही घुसेंगे। यूं कहा, जहां तक परम सत्य का प्रश्न है, जहां तक देवताओं की पूजा करने से हम अज्ञानता के कमरे में प्रवेश करते हैं, लेकिन जो अव्यक्त की उपासना करते हैं यानी कि भगवान को जो अव्यक्त मानते हैं इनका अव्यक्त रूप, तो उनकी उपासना करने वाले बहुत गहरे अंधेरे कमरे में घुसते हैं। ततो ते भूयतमो ये असंभूत्यामृता। तो इसका मतलब क्या है कि हम किसकी पूजा करें, क्या करें, सब अपनी अपनी मान्यता के यहां हम अपने अलग अलग मार्ग अपना लेते हैं। शास्त्र का पूर्ण एक तरफी निश्चयात्मक उत्तर है, उसकी अवगणना करके हम काफी गुमराह होते रहते हैं। इसलिए मनुष्य अपना अपना धर्म बना लेता है, अपनी अपनी इच्छा पूर्ण करने वाला धर्म बना लेता है। इसलिए 33 करोड़ देवता और अव्यक्त का स्थान इसमें आता है। उसके उपरांत भगवान जो है इनके बारे में परिचय करने के लिए असमर्थ, दिव्य भाव जानता नहीं ना, इसलिए वो असमर्थ का असमर्थ रहता है। हर एक मनुष्य यूं देखें तो कुछ न कुछ अपने लिए जानकारी का प्रयत्न तो करता है, लेकिन हजारों मनुष्य में अपनी जानकारी में जो पूर्णता प्राप्त कर लेता है तो ऐसा कोई एक ही होगा। सभी थोड़े सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं, हजारों मनुष्य में कोई एक ही मनुष्य, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद् अतति सिद्धः, कोई एक सिद्ध हो सकता है। सभी बिजनेसमैन थोड़े बन सकते हैं, सभी सक्सेसफुल थोड़े बन सकते हैं। आउट ऑफ थाउजेंड्स यू नो वन गेट, क्योंकि बहुत सारी कंपटीशन होती है, आप जानते होंगे, सभी बिजनेसमैन होंगे यहां पर। तो मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद् अतति सिद्धः, लेकिन यततां अपि सिद्धानां कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः, हजारों ये प्रयत्नशील करे हुए बाद में सिद्ध हुए में कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप में जानता होगा, तो कितना फिल्टरिंग होता है, है? अब देखो जो जानता है तो उसमें दो कैटेगरियां होती है, वैसे समझो तीन कैटेगरियां होती है। परम सत्य को जानने वाला की तीन कैटेगरियां बताई है, एक है अव्यक्त, दूसरा है व्यक्त, लेकिन इस बीच में जो अपने आप में ही परमात्मा का दर्शन करना चाहता है, तो ये परम सत्य की व्याख्या इस प्रकार में भागवत में हुई है कि वदन्ति तत्व विदस् तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो जो परम सत्य को जानने वाले ये तीन प्रकार के हैं, तो इसमें अव्यक्त की उपासना करने वाला जो अंधकार में क्यों जाता है, कहते कि ईर्ष्या का अंश चालू है, इसीलिए परम सत्य का क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक परिचय कर सकता है, लेकिन ये अव्यक्त का तो प्रभाव ही माना जाता है, इन्फ्लुएंस, अव्यक्त इन्फ्लुएंस होती है, इम्पर्सनल इन्फ्लुएंस है, क्योंकि आप हैं, झगड़ा हुआ है तो क्या हुआ, है तो सही ना, इसलिए आप होते हुए भी कुछ न कुछ इन्फ्लुएंस है, लेकिन इस इन्फ्लुएंस पर हम बेदरकार रहते हैं, इनकी अवगणना करते हैं और समझे कि क्या होगा तो क्या हुआ, लेकिन हमें क्या, अभी तो निस्बत नहीं है ना, है? तो ईर्ष्या का जो भाव बना रहता है वो व्यक्त को भी अव्यक्त बना देता है। तो अव्यक्त की उपासना करने वाले ज्ञानी लोग होते हैं, क्योंकि समझ तो लेते हैं कि भाई परम सत्य तो है, लेकिन हमें उसकी शरणागति क्यों नहीं, हम उनको मनाने क्यों जावे, हमें जाने की आवश्यकता क्या है, अहंकार है कुछ ना कुछ बना, वो ईर्ष्या का स्वभाव है, इसीलिए पानी अव्यक्त होते हुए भी इसकी अवगणना करना, उसका परिचय इन्फ्लुएंस द्वारा कर सकते हैं, पर लेकिन अव्यक्त यानी कि जिसका प्रभाव है, तो प्रभाव जिसका है उसकी यानी कि व्यक्ति की अवगणना करते उसके प्रभाव को मान लेते हैं। दूसरा रहा जो बीच वाला है वो अव्यक्त से जरा ऊपर का होता है और आगे बढ़ता है कि ये अव्यक्त के अनुभव मैं कर सकता हूं अपने आप में, मैं तो हूं ही अव्यक्त, क्योंकि हमने अपने आप को नहीं देखा है, और जो परम सत्य है इनको देखने का कोई सवाल होता नहीं क्योंकि अव्यक्त है, लेकिन फिर भी वो अपने आप में अनुभव करना चाहता है, तो वो योग धारणा इत्यादि करके समाधि स्थ होकर परमात्मा का दर्शन अपने हृदय में ही करना चाहता है, और सिर्फ उनके चरण कमल देख सकता है और कुछ नहीं। तो योगियों ध्यानावस्थित गते न मनसा पश्यंती यम योगिनः, ये लोग देखते हैं वो लोग जानते हैं अव्यक्त वाले, ये लोग देखने देखते हैं। अब तीसरा बाकी रहा, वो कौन है जो व्यक्त में पूरे पूरा उनको विश्वास होता है और इनका परिचय भी है, यानी कि उसका स्वभाव को भी जानता है, उसके स्वरूप को भी देखता है, उसके साथ अंतर्गत व्यवहार भी करता है, वो कौन होता है? तो कहते भक्त। भक्त का लक्ष्य है भगवान, वो व्यक्त स्वरूप है। योगियों का लक्ष्य है परमात्मा, जो लोकलाइजेशन यानी कि हृदय में स्थिति बनाकर बैठे हैं और चरण कमल तक ही उसका ध्यान जा सकता है। लेकिन जो अव्यक्त की उपासना करने वाले ज्ञानी लोग कहलाते हैं। तो वदन्ति तत्वविदस् तत्वम यद् ज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। परम सत्य का परिचय इन तीन माध्यम से होता है, सही? ईर्ष्या अव्यक्त तक चालू रहती है। अब ईर्ष्या होते हुए भी हम समझते हैं कि हम तो जो हैं, ये शरीर हैं, जो भी हैं, हम अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए आए, अरे भगवान ने ये सारा बनाया हमारे लिए है, सही? हर एक जीव अपनी अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए आता है, जैसी इच्छा है वैसे उसे शरीर प्राप्त होता है। 84 लाख योनियां बताई जाती हैं, ये सब में जीव है, और ये जीव आते हैं अपनी अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए, और हम समझ रहे हैं कि ये इच्छा पूर्ण करने के लिए हमें कंपटीशन करनी पड़ेगी, क्योंकि सब अपने अपने स्वार्थ में जी रहे हैं। इच्छा पूर्ण करना स्वार्थ का प्रश्न होता है, हम सभी स्वार्थी, हमें ये खाना अच्छा लगता है, हमें वो खाना अच्छा लगता है, यानी कि इन चीजों में हमारी मान्यताएं अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए बहुत सारी बनी रहती है। जितनी इच्छाएं हैं उतनी ही मान्यता है, वो सारी इच्छा मन में घर के बैठी है ना, मन में पड़ी है। तो मन के द्वारा इच्छाओं पूर्ण करने का जो प्रावधान दिया जाता है उसे मान्यता करते हैं, और उसमें हम अकेले यदि करने में समर्थ नहीं, कुछ एक्सपेडाइट करना चाहते तो शास्त्र में बताया जाता है कि भैया देखो बहुत धन कमाना है, जरा शिव जी की उपासना कर लेना, वो आसानी से दे देंगे, वो आसानी से दे देंगे। यानी कि उपासना करने अपनी जिम्मेदारी है, देना उसकी जिम्मेदारी है, बनियागिरी हो गई, बनियागिरी। तो ये मर्केंटाइल बिजनेस, कोई देवताओं की शरण में शारीरिक सुख शांति के लिए ही जाते हैं, लेकिन अपने भाव के छुटकारे के लिए कोई नहीं जाता। जो मूल रोग है उसका निदान करने के लिए कोई देवताओं के पास नहीं जाता। तो इतने सारे सत्य पड़े हमारी नजर में, सब प्रकट हुए, फिर भी हम ईर्ष्या से अंधे होकर इनकी अवगणना करते हैं, इनको नकारते हैं। इसे निगेशनिज्म कहते हैं अंग्रेजी में, तो निगेट क्या हो गया, आई वॉन्ट टू बी लॉर्ड ऑफ माई डिजायर एंड आई विल सर्वे टू वट एवर आई परव्यू, आई विल बिकम लॉर्ड एंड मास्टर। सो ऐसी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए और एक्सपेडाइट करने के लिए हम देवताओं की शरण में जाते, कोई और बीच में विघ्न आते हैं तो दूसरे को भी पकड़ लेते कि वी एंगेज देम टू सर्व अवर सेल्फिशनेस, दे आर नॉट अवर सर्वेंट्स, दे आर सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड एंड हिज मैनेजमेंट। सो हमारी ईर्ष्या कितनी प्रकट होती है, देवताओं का ये बिजनेस, वो तो हर एक के लिए सारे सप्लायर मैनेजमेंट इत्यादि में पड़े हैं और दे गिव बट वी स्पॉइल द होल अफेयर्स बिकॉज ऑफ अवर अनसेटिएबल डिजायर्स. हमारे अतृप्त इच्छाएं सारा चौपट कर देती है. ये इच्छाएं तृप्त करते करते हम दुखों का भी तो अनुभव करते हैं ना, दुखों का भी अनुभव करते हैं. क्यों? हम तो सुख चाहते हैं, मिलता है दुख. क्या ये देवताएं सिर्फ सुख देने के लिए खड़े हैं? क्या देवता दुख नहीं दे सकते? ये शनि देवता की पनौती देखी है? साड़ी साटी बैठी हो तो क्या हाल होता है कहते हैं. तो क्यों? ये तो देवता है, इनके शरण में जाओ. शनि का नंग पहनते कुछ फायदा हो जाएगा? किसी को मंगल, किसी को क्या, कुछ नहीं है. ये सब मर्केंटाइल बिजनेस है. देवता भी सृजित है. देवता सृजन में आते हैं. सृजन पहले देवता नहीं है. दे आर ऑल्सो लिविंग एंटिटीज. दे आर वेरी पावरफुल लिविंग एंटिटीज, नो डाउट. बट दे नो हु दे आर सर्विंग. बट वी थिंक दैट दे हैव टू सर्व अस बिकॉज वी प्रे टू देम. तो ये जो चीज है तो हमें परम सत्य से दूर ले जाती है. तो यान्ति देवव्रता देवान, पितृन्यान्ति पितृव्रता, भूतानि भूते ज्ञान्ति मद्याजिनोपि मान. वहां भगवान स्पष्टता कर देते हैं. जो ना समझ लोग हैं तो ना समझ में अन्यों की शरण ले लेते हैं, जिसमें देवता आते हैं, पितृ आते हैं, भूत इत्यादि भी आते हैं, जो तांत्रिक लोग शरण लेते हैं. और यदि मेरी शरण जो कोई लेता है तो मेरे पास आए. जाना कहां है, हम कौन है, हमारी वास्तविकता क्या है, हमारा सत्य का परिचय तो करना ही बाजू रहेगा. लेकिन ये सारे तत्व इसीलिए भगवान ने बनाए हैं कि हमें कुछ इनके प्रति कुछ अकल पैदा हो, एजुकेशन पैदा हो. तब भगवान एक होते हैं, इनका विस्तार अनेक होता है. और क्योंकि हम इतनी छोटी आत्मा होती है, इनके अंश होते हैं, तो ये अंश इनसे बिछुड़े, ना समझ होकर बिछुड़े हुए हैं. भगवान भगवत गीता में यह स्पष्टता कर देते कि इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप. इच्छा और द्वेष जो साथ साथ में पैदा होता है, ये अपनी हम छोटी छोटी सी स्वतंत्रता हमें मिली है, उसका भी हम दुरुपयोग करते हैं. तब भगवान के साथ ईर्ष्या करने के हमें ये सम्मोहन प्राप्त हुआ है, बिविल्डरमेंट. माया में हम कहते हैं कि ये संसार में कुप्पे हैं, निकलना बहुत मुश्किल है. आप तो कहे जाते हैं, हमें तो इतनी इच्छा पड़ी है, क्या होगा क्या नहीं, हमारा हाथ देख लो जरा, है कि नहीं, होगा कि नहीं, कितने होंगे, सब बता. ये हम अपनी इच्छाओं को प्राधान्यता देकर ये सारी रचना क्या है उसको समझने में ना समर्थ बनते हैं. अब भगवान कहते हैं कि देखो, परम तत्व मैं हूं, मेरा विस्तार ऐसा हुआ है कि मैं परमात्मा के रूप में भी हर एक आत्मा में भी बस सकता हूं, हर एक कण कण में भी बस सकता हूं, दो कण के बीच में भी बस सकता हूं. हुँ? अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजा। तो हम जिस स्थल काल और पात्र के अनुसार हम अपना अपना यहां इच्छा पूर्ण करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो इसमें जिन जिन का हम उपयोग लेते हैं तो ये इच्छाएं कभी पूर्ण होती नहीं। ये इच्छाएं पूर्ण इनसे होती नहीं। यदि एक इच्छा पूर्ण होने का आभास होता है तो दूसरी तुरंत खड़ी हो जाती है। तो हमारी पीछे जैसे पूछ चली आती है ना, इसी तरह इच्छाएं चली आती हमें छोड़ती नहीं। यह शरीर छूटने के बावजूद भी इच्छाएं पड़ी रहती है, जो मन बुद्धि और अहंकार वाले सूक्ष्म शरीर में जाते। तो भगवान स्पष्ट कहते हैं कि ये इच्छा तो तेरे दुख का कारण है, तेरे बंधन का कारण है, तेरी नासमझ का कारण है। और इच्छा ईर्ष्या से पैदा होती है, तो ईर्ष्या मूलभूत कारण है। तूने मेरी साथ ईर्ष्या की है, तू मेरा आश्रित हो, मेरे पर निर्भर कर रहा है, मैं करता हूं फिर भी तू मुझे नकारता है, कितना द्वेषी होगा तू। भगवान को नकारना निगेशनिज्म, ही इज द फर्स्ट विक्टिम ऑफ अवर निगेशनिज्म। वी मेड द सुप्रीम लॉर्ड द फर्स्ट विक्टिम ऑफ अवर निगेशनिज्म, बट ही इज सो काइंड फादर दैट ही एक्सपांड्स हिमसेल्फ एंड सिट्स इन अवर हार्ट एज परमात्मा, एंड येट वी कीप ऑन डूइंग समथिंग एल्स। तो ये इच्छा वहन करने के लिए कहते हैं कि तेरी जो इच्छा हो मैं पूर्ण करने में समर्थ हूं, मैं ही अकेला जो इच्छा, तुझे देवताओं की शरण में जाना है जा। काम इस्ते स्थिर हत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। हम अपनी कामनाओं अतृप्त होने के कारण देवताओं की शरण में जाते हैं, क्योंकि हमारा जो अपृत ज्ञान यानी कि हमारा वास्तविक ज्ञान जो परम सत्य का ज्ञान है वो चुरा गया है। इसलिए तुम मेरा मेरे बारे में सोचता नहीं। तो क्या बात करते हैं, तो देवान देवो यजो यान्ति मध्याजनोपि मां। जो देवताओं के भजने वाले हैं तो देवता के लोग में जाएंगे, मुझे भजने वाले मेरे पास आएंगे। शिव जी को भजने वाले कहां जाते हैं, शिवलोक में जाते हैं। अरे शिव जी को गरबार है क्या कोई रहने का है? वो बेचारे सारे जगत के पिता होते हुए भी इनको रहने का मकान नहीं है। है कैलाश तो गुफा है, वो मकान कहलाता है क्या? डिश वॉशर भी नहीं मिलेगा वहां। शिव जी सारे जगत के माता पिता, वो दिन भर स्मशान में पड़े रहते हैं और संध्या के समय पार्वती सबको सारा परिवार लेकर एक पेड़ से नीचे दूसरे पेड़, इसलिए रोज अलग अलग जगह रात्रि बिताते हैं और निलेप। सारे जगत के माता पिता सब इच्छा पूर्ण करने वाले शिव जी, आशुतोष कहलाने वाले। अरे दुश्मन और दानव की भी इच्छा पूर्ण करते हैं, किसकी इच्छा नहीं पूर्ण करते बताओ तो सही। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैंने सारी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए इन लोगों को जिम्मेदारी दे दी है। इसीलिए सभी लोग जो अपनी अपनी श्रद्धा से इन लोगों के पास जाते हैं, वो लोग समझते नहीं कि अंत में तो प्रदान करने वाला मैं हूं, लेकिन वो अविधि पूर्वक हम करते हैं। ये चाप्यन्य देवता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव यजन्ते अविधि पूर्वक। जो जो अन्य अन्य देवताओं के पीछे अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार जो पूजा करते हैं इनके पास कुछ, तो वास्तव में देने वाला तो मैं हूं, लेकिन इनडायरेक्टली मेरी पूजा करते हैं। देवताओं की पूजा, भगवान की पूजा इनडायरेक्ट बताई, सीधी नहीं बताई, इनडायरेक्ट बताई। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है? यहां तो अविधि पूर्वकम कहा, विधिवत नहीं है। विधि मीन्स स्ट्रेट। अब देखो, पति पत्नी में झगड़ा हुआ है, इम्पर्सनल बने हैं, निगेशनिज्म चालू है, बच्चे को फंसाते हैं, जा उसको कह दे नहीं खाना। वी ट्राई टू गेट समबडी एल्स इंटरप्रेटर इंटरमीडिएटर। अब बोला चालू रखते हैं, ऐसा स्वभाव है, बच्चों को भेज देते हैं कि जा, इनको कह नहीं खाने वाला हूं, सीधा क्यों बोल, राइट? तो इसी तरह ये इंटरमीडिएटरी हम बना लेते हैं सबको, सीधा व्यवहार अविधि पूर्वकम। ये व्यवहार अविधि पूर्वकम बताया गया है कि डोंट पुट इन बिटवीन। कृष्ण इज क्लेमिंग इन भगवद गीता कि ममई वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन। जो ये आत्मा है ना, जो जीव है ना, वो मेरा अंश है, वो मेरा अंश है। जब ये जीव भगवान का सीधा अंश होते हुआ भगवान के साथ सीधा व्यवहार क्यों नहीं करता? क्योंकि ईर्ष्या पड़ी है ना, निगेशनिज्म बना रखा है उसने, नकारात्मक वलन उसे कहते हैं, नकारते हैं। आई विल लीव विदाउट यू। हमारे बच्चे भी कभी 12 साल के बाद जब एडोलेसेंट में प्रवेश करते हैं तो कैसे तंग करते हैं माँ बाप को पता है ना। तो ऐसा व्यवहार हमने भगवान के साथ किया है, इसलिए ये व्यवहार वो प्रतिकृति रूप चालू है। तब भगवान कहते तू तो मेरा बेटा है, वो संबंध की विस्मृति भी हो जाती है। बाइबल में उसे प्रोडिगल सन के रूप में बताया है। ये आरोन बाइबल का पात्र है। किसका सन था आरोन? पिताश्री कहां है? आरोन नाम रखा है, बट इट इज ए बिब्लिकल नेम। देर इज समथिंग टू डू विद द सुप्रीम। तो उसका मतलब जानना चाहिए, उसका अर्थ जानना चाहिए। हम तो सोचते हैं अरुण है, आप हिंदी में अरुण कहते हैं, अंग्रेजी में आरोन कहते हैं, अर्थ तो यही रखा। मेरा कहने का मतलब है जीव को हम संबोधन करते हैं भगवान के नाम से। मैं आप भगवान के संबंध में या इनकी भक्ति के भक्तों के संबंध में, आरोन एक भक्त था और मेरे ख्याल से वो जीसस के का एक अनुयायी था। 12 एपोसल्स में नहीं है आरोन, लेकिन ये ओल्ड टेस्टामेंट में आता है उसका नाम। अब्राहम, अब्राहम का बेटा आरोन, जोशुआ, जोशुआ का बेटा आरोन, ऐसा बताया। तो नामकरण जो होता है ना, तो आत्मा के संबंध में, यानी कि आत्मा परमात्मा का अंश है ना, तो उसके संबंध में होता है। शायद आपकी इच्छा कुछ और होगी, हो गया कुछ और। चलो नाम तो अरुण रखा है तो ठीक है। कहने का मतलब है कि भगवान हमें सीधा क्लेम करते हैं, आत्मा को, शरीर को नहीं क्लेम करते। शरीर कौन देता है? दुर्गा देवी, महद्योनि, महद्योनि दुर्गा देवी शरीर देती है। जैसे बच्चा पैदा हुआ है, उसका सर्वप्रथम अधिकार मां का होता है, पिता का नहीं, क्योंकि शरीर देने वाली इन दुर्गा देवी की प्रतिकृति है। शी इज रिफ्लेक्शन ऑफ मदर, मदरहुड, मदर दुर्गा, मदर नेचर, राइट। और उसी तरह पिता, ताशाम महद्योनिर अहम बीज प्रद पिता। जब भगवान भगवत गीता में कहते हैं, कृष्ण भगवान क्या कहते हैं कि सर्व योनिषु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, सारी योनि मूर्तयन्ति संभवन्ति जाय, जो जो इनकी पैदाश होती है, ताशाम महद्योनि अहम बीज प्रद पिता। ये महद्योनि यानी कि दुर्गा देवी में जो बीज प्रदान करने वाला पिता में, कृष्ण भगवान को और दुर्गा देवी में क्या? नहीं नहीं, आप देखोगे कि कृष्ण भगवान अपने गोलोक वृंदावन में रहते हैं, इनका एक विस्तार जब भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति होने वाली है ना, तब महाविष्णु के रूप में आते हैं, जो अप्रकट भौतिक दुनिया उस समय अप्रकट होती है, तो उसके मूल तत्व तो होते हैं अनमैनिफेस्टेड, तो उस पर नजर करते हैं, नजर करके योग निद्रा में चले जाते हैं। लेकिन योग निद्रा कैसी है? आंख बंद नहीं है, आधी खुली है और आधी बंद है। आपने भगवान की फोटो देखी है, विष्णु भगवान की फोटो देखी है, तो आप देखना, वो योग निद्रा में हमेशा होते हैं। तो ये उनका जो सारा वर्णन इसी तरह आता है। तो ये जब नजर दिव्य होती है, क्योंकि भगवान दिव्य है, तो ये नजर भौतिक सृष्टि जब हुई नहीं थी, लेकिन आध्यात्मिक जगत में एक कोने में एक बादल की तरह उसका सारा इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं, तो उस पर जब नजर होती है तो उसके पास रिफ्लेक्शन होता है, उसे हेलो कहते हैं। जैसे हम उदाहरण देते हैं कि रात को चांदनी जब होती है, चंद्रमा, लेकिन ठंडी भी होती है, तो उसके रिफ्लेक्शन में चांद के आसपास रिंग भी पड़ती है। उसी तरह ये भौतिक सृष्टि पर भगवान की नजर जो पारदर्शक होती है, अति तेजवन होती है, तो उसमें उसके आसपास जो रिंग होती है, तो ये हेलो कहलाता है। भगवान की फोटो के पीछे आपने तेज किरण भी देखी होगी, वो भी हेलो कहलाता है। मत्थे के पीछे तेज किरण आपने देखी है, कभी कभी गणेश और सारे देवताओं के पीछे भी हम तेज किरण लगा देते हैं, सही ना? इसका कारण क्या? जो तेज है ये ब्रह्म तेज है, ये ब्रह्म तेज भगवान से निकलता है, और ये ब्रह्म तेज का अंश जीव कहलाता है, जो चेतनामय है, जिसमें जानकारी की शक्ति, जो अचिद है, जिसमें चेतना नहीं, वो भौतिक पदार्थ का कण कहलाता है। दोनों में कोई अंतर नहीं बताया, एक ही अंतर है, चेतना किसने, जो चेतन चित कण जिसे कहते हैं वो आत्मा होती है, जो अचित कण होता है वो पदार्थ का कण कहलाता है। तो यहां ये व्यवस्था बताई कि भगवान ने जब दृष्टिपात किया, तब ये भौतिक सृष्टि की आसपास लिंग रूपी जो हेलो दिखाई दिया वो शंभु कहलाता है। हाँ, ये शिव जी भगवान के तेज का रूपांतर बताते हैं, इट्स ए रिफ्लेक्शन। जैसे दूध में से दही का रूपांतर होता है ना, हाँ, बिना मिलावट भी दही बन जाएगा, एसिडिटी बढ़ गई है अंदर तो दही कोएगुलेट हो गया, दूध कोएगुलेशन को दही कहते हैं। लेकिन दही में से फिर से दूध नहीं बनता, चाहे लेबोरेटरी में लाख करो उपाय, हाँ, दूध नहीं बनेगा। तो विष्णु भगवान क्या ये तेज का रूपांतर जो लिंग रूपी और महद्योनि पर प्रकट होता है, ये महद्योनि यानी कि सारी सृष्टि का सृजन करने की मूल स्थान बताया जाते हैं। हम तो एक ही छोटे बच्चे की सृजन करते हैं, लेकिन भगवान देखो सारी सृष्टि का सृजन इस ढंग से दुर्गा माता को निमित्त बना साधन शक्ति बताते हैं। साधन शक्ति भगवान की साधन शक्ति, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम अपि यस्य चेष्टते सा गोविंदम आदि पुरुषम तमहम। हमें गोविंद जो आदि पुरुष हैं भगवान श्री कृष्ण उनको भजना चाहिए, ये ब्रह्मा जी कहते हैं। क्यों? कि उसकी साधन शक्ति पैदा करने की साधन शक्ति दुर्गा कहलाती है, जो भगवान की इच्छा के अनुरूप होकर करती है, भगवान की इच्छा के अनुरूप। माता का जीवन पूर्ण होता है जब बच्चा पैदा होता है, लेकिन शायद पति की इच्छा न हो अभी बच्चे मत पैदा करो, कंप्लायंस इज ये जो भावना है सारी पति की इच्छा के अनुसार वो कंप्लायंस कर सकती लेकिन एब्यूज नहीं कर सकती। तो ये भावना बच्चों के प्रति इनका लगाव क्यों ज्यादा है, ये दुर्गा माता से पूछना चाहिए, क्योंकि इनका स्वभाव है। तो भौतिक सृष्टि के भौतिक देह देने वाली दुर्गा माता है, और शिव जी लिंग रूपी माध्यम बनते हैं जिसमें जीवों का संचार होकर अंदर प्रकट होते हैं। अब आदि भौतिक सृष्टि पैदा करते हैं, तो शिव जी भौतिक सृष्टि में महादेव कहलाते हैं। अब इनका संसार देखो, वो स्वयं सारी सृष्टि पैदा करने वाले आदि मां बाप हैं, भौतिक मां बाप, भौतिक शरीर देने वाले शिवजी और पार्वती, इनको रहने के लिए कोई घर नहीं, सारी सृष्टि उनका घर होता है, फिर भी इनका विस्तार करके हमें क्या दृष्टांत बताते जाते हैं। और हमने कहा कि हर एक जीव अपनी अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए आता है, और अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए स्वार्थ बताता है, यानी कि ईर्ष्या वाला स्वभाव चालू रखता है। बच्चों अपनी इच्छा जब प्रकट करने लगते हैं, जब एडोलेसेंट बनते हैं, तब ये ईर्ष्या से माँ बापों का भी कितना परेशान करवाते हैं, माँ बापों को परेशान करवाते हैं, स्वार्थ है ना इनका, अज्ञानता में भी स्वार्थ तो होता है, लेकिन कैसे इच्छा प्रकट होती। अब देखो ये शिव जी के परिवार का उदाहरण हमारे लिए कितना श्रेष्ठ, जिनके पास कोई घर नहीं बार नहीं और रहते हैं विरक्त, यानी कि जानबूझकर स्मशान में रहते हैं, क्योंकि वहां आने वाला कौन होगा, किसके लगाव जबरदस्ती से दुर्गा माता ने छुड़वाए हैं, इसीलिए ही तो आता है ना जलाने के लिए स्मशान में, सही। और जिनकी इच्छा अतृप्त रही है वो गोस्ट गोब्लिन्स शिव जी के परिचारक रहते हैं, इनके पीछे पीछे रहते हैं। शिव जी के पार्षद लोग कौन है? वही तो है भूत पिशाच इत्यादि। फिर भी शिव जी को वो तंग नहीं कर सकते, जिनकी इच्छा अतृप्त रही है इनको तंग करने में वो काफी मशहूर होते हैं, सही ना। अब ये देखो शिव जी इनका स्वभाव कितना बढ़िया है, इनके परिवार में कितने लोग हैं? पार्वती है, गणेश है, कार्तिकेय है, शेर भी है, नंदी भी है, चूहा है, मोर भी है और सांप भी है। ये एक दूसरे को खाने वाले स्वभाव वाले हैं, विरोधी स्वभाव है। चूहा सांप का खुराक होता है और सांप मोर का खुराक होता है, वहां शेर और नंदी में भी यही बेर है। और कार्तिकेय और गणेश जी के स्वभाव में भी कितना अंतर है। गणेश वेरी कूल पर्सनालिटी, कूल, कार्तिकेय फटाफट काम करने वाला। पता है ना एक कहानी, वो दोनों बच्चों में कौन होशियार है, कार्तिकेय या गणेश? तो कौन होशियार है उसकी परीक्षा हो रही थी, तो कहां के सारे जगत के माता पिता हैं, सारे जगत की प्रदक्षिणा जो कर लेता है, तो जो सर्वप्रथम आ जाता है तो वो होशियार माना जाएगा। तो कार्तिकेय तो मोर लेकर भागा जो सारे जगत की प्रदक्षिणा करने लगा सच में, और गणेश जी आराम से चूहे को कर रहे चल बेटा धीरे धीरे, और माँ बाप की प्रदक्षिणा कर ली, शिव जी और पार्वती की प्रदक्षिणा कर ली और बैठ गए, और वही स्थल पे बैठ गए। और कार्तिकेय कहे अभी तो उठा नहीं जा मूर्ख। गणेश के कहते हैं हमने तो कर ली तेरे पहले से। तो कैसे हो सकता है? तो जा पूछ, मैं झूठ बोलूं? तो मां से पूछ ले। तो पार्वती से पूछने लगा कि ये झूठ बोल रहा है कि ना सत्य बोल रहा है। तो कैसे? बेटे उसने हमारी ही प्रदक्षिणा कर ली, कलबंदी। लेकिन ये विरोधी स्वभाव है, गंभीरता से अकल पूर्वक विचार करना और सिर्फ शारीरिक ताकत पर ही अपनी अकल का आधार रखना, वो दोनों में अंतर होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि विरोधी स्वभाव वाले सदस्य होते हुए घर में कभी झगड़ा हुआ है? हुआ है? सुना है कभी? पढ़ा है शिव पुराण में या देवी भागवत में, कहीं भी पढ़ा है? क्यों? शिव जी और पार्वती के हाथ में माला है, ये माला पर क्या जपते हैं पता है शिव जी? उनका जो मूल स्वरूप था ना महाशंकर्षण का, वो इनका नाम जपते हैं हमेशा। यानी कि संसार का जो कीचड़ है त्रिगुणात्मक भाव में शिव जी फंस सकते हैं, लेकिन माला बचाती है इनको। दही हो गया, रूपांतर हो गया, इसलिए वो किसी के प्रबल तामस से वो प्रभावित भी हो सकते हैं शिव जी। जैसे वृकासुर राक्षस पार्वती को पत्नी बनाना चाहता था, तो शिव जी की आराधना उसने इतनी कठोर तपस्या की कि शरीर के अंग काट काट कर आहुति देता है और नमः शिवाय का जाप करता था। तो शिव जी के मेरे नाम लेता है, अपने शरीर का नाश करता है, मूर्ख है, उसको कुछ अवश्य चाहिए। तो आशुतोष तैयार हो गए इनको वरदान देने के लिए। तो कहा कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं उसके सर के 1000 टुकड़े हो जाऊं। तो शिव जी ने तथास्तु कह दिया, लेकिन वो मूर्ख तो शिव जी के सर पे हाथ लगाने आया। दिया है मैं आप पर ही ट्राई कर लू, चलता है कि नहीं। सर तो शिव जी तो भागे। दुष्टों का परिचय ऐसा उनको हो रहा है। तो भागे 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 भगवान अपने संकर्षण स्वरूप को याद करते हैं। तो तब विष्णु भगवान ने सोचा कि चलो एक छोटे बालक के रूप में बीच में पड़ गए और ये वृकासुर भागता था उसको पकड़ा। ओ चाचा जी कहाँ जा रहे हो, इतने भागे भागे। कि ये लड़के तूने देखा वो शिव जी कहीं भागे थे? हाँ गए तो सही, लेकिन पागल जैसे तो हमेशा भागते फिरते हैं। शिव जी पागल है, उनकी इन पर क्या भरोसा, लेकिन आप क्यों, आप तो इतने बड़े पंडित के बेटे हो, विश्वाप के भी आप पुत्र हो, और उसके उसके परिवार में तो बहुत बड़े बड़े असुर लोग पैदा हो गए, तो वो भी तो आप उसके वंशज हैं। तो चाचा जी बताओ हम क्या करें, आपको ऐसे भागने की आवश्यकता क्या है? तो कि हमने ऐसा वरदान प्राप्त किया है तो हम उन पर ही अजमाइश करके हम ये देखना चाहते हैं कि देखो काम करता है कि नहीं। तो बालक ने कहा कि पागलों का भरोसा नहीं करना चाहिए। और जहां तक वरदान का प्रश्न है, आज तक शिव जी ने वरदान देकर इन लोगों का अहित ही किया है। भौतिकता का वरदान देते हैं, अहित करते हैं। और ऐसा वरदान तो उसके पीछे क्या मालूम। तो क्योंकि हमें पार्वती चाहिए थी और हमने इनको ट्रिक कर दी कैसे और दे दिया। तो हम तो सोचते हैं कि यदि हमें पार्वती का उपभोग करना है तो शिव जी की आवश्यकता क्या है। क्योंकि ये तो दोनों तरफ मूर्खाई ही मूर्खाई है, आप क्यों मूर्ख बनो। और ऐसे कहते हैं कि भगवान का नाम लेकर आप आनंद में क्यों नहीं रहते। कीर्तन में कितना आनंद है, ऐसी वासनाओं लेकर कहां जाओगे। उसकी तो तृप्ति होती ही नहीं और वरदान कभी फलते नहीं, नाश होता है। तो कैसे नाश होता है, कभी नहीं। हम आपका नाश नहीं करेंगे, हम तो कहते हैं कीर्तन में नाचो, हाथ ऊंचे करो और ऐसे करो ऐसे करो, मत्थे पर लगाओ, क्या होगा। और उसने इसी ढंग से अपनी बालक जबान में वृकासु को अपने ही मस्तक पर हाथ लगवा दिया और वहां ही उसका सर फूट गया, 1000 टुकड़े हो गए और खत्म हो गया। तो गुणावतार है, तमोगुण का अवतार है भगवान का, ये मामूली तो नहीं है। लेकिन ये जो तत्व है शिव तत्व और विष्णु तत्व में भेद पड़ता है, शक्ति तत्व में भी भेद पड़ता है, और जीव तत्व हम है उसके सत्य में भी भेद पड़ता है। हर एक की स्थिति बताई है, हम जीव है तो दूसरे जीव तत्व पर जो देवता है इन पर क्यों आधार रखे। इन देवताओं के महादेव शिव तत्व, इनका कोई अनुकरण नहीं कर सकता, लेकिन उनके सिखाए हुए मार्ग पर हम चल सकते हैं। इसीलिए यदि भगवान श्री कृष्ण का नाम यदि शिवालय में भी जो माला करता है तो शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। ओम नमः शिवाय करके भौतिक इच्छाओं तृप्त करने के लिए जो भगवान शिव जी का ध्यान खींचना चाहता है या आशीर्वाद मांगना चाहता है तो एक परेशानी पैदा करता है शिव जी के लिए। चाहे दे देंगे लेकिन उस वो मिश्रित है। मिश्र यानी कि आपने कभी रबड़ी खाई है, बहुत मीठी लगती है, लेकिन रबड़ी में यदि कुछ थोड़ी बालू भी डाल दो तो रबड़ी खाने में तो टेस्ट तो वही लगेगा लेकिन सारी मजा उड़ जाएगी, सही ना। तो भौतिक वरदान जो है जो देवताओं द्वारा देते हैं वो हमें मूर्खता से ऊपर नहीं उठाते। ये वरदान प्राप्त करके हम अपनी अतृप्त कामनाओं को बहकाते हैं, हम एक्सपेडाइट करना चाहते हैं। इसलिए कामैस्ते स्थिर हतक ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम आस्थाया मयाते विहिता स्वया। ये भगवान कृष्ण कह देते हैं कि कामनाओं से अतृप्त होकर हम देवताओं की शरण में जाते हैं। जबकि ये देवता हमें जो प्रदान करते हैं तो उनके द्वारा ही तो दिया गया है, तब देवता देते हैं। इसलिए कामैस्ते स्थिर हतक ज्ञाना, कामनाओं से अपना वास्तविक ज्ञान चुरा जाता है। तो अंतवंतु फलम तेषाम तद्भवत्यम अल्पमेधसाम देवान देवो ये जो यान्ति मध्याजिनो अपि माम। ये देवताओं द्वारा जो फल प्राप्ति होती है वो अंतवंतु होती है, काम चलाओ होती है, वो अतृप्ति बढ़ाएगी, कामना को तृप्त नहीं करेगी, अपनी इच्छाओं को तृप्त नहीं करेगी। अपनी इच्छा कैसे तृप्त होती है? ये इच्छाएं तो अग्नि जैसी भड़कती है, उसमें हम ऐसे प्रयत्न करते हैं कि फल प्राप्त करके और इसमें हम हवि यानी कि अग्नि को जला और जलाने वाली चीजें डालते हैं तो शांत होगी इच्छाएं या और बढ़ गई। यज्ञ इसीलिए करते हैं क्योंकि आहुति है, आहुति में सेक्रीफाइस होता है। ओम स्वाहा बोलो तो यज्ञपति विष्णु को अर्पण किया जाता है। तो ये क्यों अर्पित करते हैं? हमारी इच्छा को स्वाहा करो। जब हम अपनी इच्छा पर हमें अपने आप को इंद्रिय तृप्ति में और स्वाहा कराना चाहते तो क्या होता है? उसका उल्टा परिणाम होता है, ये यज्ञ नहीं कहलाता है। तो यज्ञ यानी कि भगवान की प्रीति के लिए जो कर्म करता है तो वो कर्म बंधन से छुड़वाता है, अन्यथा सारी चीजें जो भगवान की प्रीति प्राप्त नहीं कराती वो कर्म बंधन कराती है। तो हमें देवताओं से ये शिक्षा मिलती है और महादेव सारे देवताओं के सबसे ऊंचे महादेव। तो वैष्णवानाम यथा शंभुम, ये भगवान विष्णु के उपासक के रूप में हमें शिक्षा दे रहे हैं, इसलिए महावैष्णव कहलाते हैं। और इनकी इनकी बताए हुए मार्ग पर जो चलता है तो वो भक्त कहलाता है। देवताओं का अपमान नहीं करना चाहिए, इनका आदर सत्कार होता है लेकिन इनकी अलग से पूजा नहीं होती। जो कामनाओं से पीड़ित होकर अलग पूजा करते हैं तो वास्तविक रूप से देवताओं का ही अपमान करते हैं। तो आसुरिक भाव छूटना चाहिए, हमारी अज्ञानता दूर होनी चाहिए। शिव जी की महिमा बहुत गहरी है क्योंकि वो हमें विरक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। यानी कि जो शिव जी को मानते हैं तो शिव जी जैसे करते हैं वैसे करना चाहिए। कोई हनुमान जी को मानता है तो हनुमान जी जैसे करते हैं वो नहीं करना चाहते हैं। तो फायदा क्या? सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ा करें, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता सबीरे जानकी माता तब अष्ट सिद्धि ही चाहिए, तो हनुमान जी को क्यों तंग करे, उनकी पास थी, उन्होंने भगवान की सेवा में लगा दी, और तुम अपनी सेवा में लगाना चाहते हो, इसलिए परेशान करते हो। तो समझ समझ में बहुत अंतर होता है। ना समझ होकर हम अपना उद्धार नहीं कर सकते। जो भगवान ने ये देवताओं की व्यवस्था दी है उसको आदर सम्मान पूर्वक समझना चाहिए और इनकी व्यवस्था बनी रहे। अपने हिंदू इतिहास में तो ये सारी मान्यताओं ने तो बहुत खिचड़ा बना दिया है। माता का जागरण इत्यादि जो करते हैं, क्या तमाशा करते हैं, सब सेलिब्रिटी को बुलाकर परेशानी परेशानी, और ये म्यूजिक कोई सात्विक भाव नहीं पैदा करता, राजसिक और तामसिक भाव, वो अंधकार में ही करना चाहते हैं, दिन में क्यों नहीं? क्योंकि सात्विक भाव से करें तो अलग बात है। वह अंबा माता या वैष्णव देवी जो वैष्णवी कहलाती है, क्योंकि विष्णु की सेविका है, इसीलिए वैष्णवी कहलाती है। तो सेवा तो विष्णु की करती है, तो हम उसकी चपरासी क्यों करें? इनकी सेवा अलग से वो स्वयं अपमान समझती है। सम्मोहिनी तंत्र में दुर्गा कहती है मैं ही राधा, क्योंकि वो उसकी परछाई है। यानी कि हमें उल्टे मार्ग से चलना पड़ता है। हम अपनी इच्छाओं के लिए देवी के पास जाते हैं, चुन्नी चढ़ाते हैं, ये करते हैं, ये मान्यता रखते हैं, वो मान्यता है, ज्वाला देवी जाओ, ये करो वो करो, ये सब कामना की तृप्ति के लिए करना चाहते हैं। लेकिन हम ये कामना की मूर्ति थोड़ी, हम आत्मा, हम वास्तविक हैं। उनको नकारते हुए हम शरीर की पिंड पेशण करा करें, वो कैसे चलेगा? पिंजड़े में जो पंछी हैं इनको खिलाओ, पिंजड़े साफ मत करा करो सिर्फ। आप पिंजड़े में पड़े हुए पंछी, पर ये कामना कहां तक लेती है पता है? जानता है फिर भी वो बढ़िया भजन है गुजराती में, आपको पता है, माता जी को पता है, पंखीड़ा ने पिंजरू जुनू जुनू लागे, बहु समझाव्यू तो ए पंछी नवु पिंजरू मांगे। सही ना? वी नीड न्यू बॉडीज, देहम देही, मुझे अच्छा देह दे दो, अच्छे कर्म करूंगा तो और ब्यूटीफुल देह मिलेगा। मिलता है, लेकिन ये आने जाने का चक्कर भी तो चालू रहता है। जाना कोई नहीं चाहता है, यही देह में पड़े रहना चाहते हैं। तो देवता भी वैसे कहलाते हैं अमर हमारे हिसाब से, लेकिन वो भी सृष्टि में प्रलय जब होता है तो तब सभी अदृश्य हो जाते हैं, उसका क्या? हम व्यक्त होए हुए भी अव्यक्त बनना चाहते हैं। हमारा पूर्ण व्यक्तित्व तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के चरित्र को समझकर प्रकट होता है, हमारी सच्चाई प्रकट होती है। तो सिर्फ देवताओं की उपासना करके हम बनियागिरी करके हम अज्ञानता यानी अंधकार में ही रहते हैं, हमारी वास्तविकता को हम ठुकराते रहते हैं। इसमें देवताओं का गुनाह नहीं है, गुनाह हमारा है। वो तो भगवान के बताए हुए काम करते हैं, करेंगे ही, उनकी मैनेजमेंट बहुत बड़ी है। तो मिनिस्टर के रूप में भी आते हैं, सप्लायर के रूप में भी आते हैं, टैक्स कलेक्ट करने भी आते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द मिनिस्ट्री द होल गवर्नमेंट ऑफ कृष्णा। तो इन लोगों का ओब्लिगेशन भी रहता है, जो ना समझ होते हैं ना, तो अच्छे कर्म करके यदि कोई प्रयत्न करता है कि मैं सिद्ध हूं, मुझे मेरी ये इच्छा प्राप्त हो जाए, तो इन पर मुफ्त करने के लिए कुछ मिलता नहीं, उनको पूरे पूरा हिसाब देना पड़ता है, उसे ऋण कहते हैं। ऋण, ऋणानुबंधन, ऋण से हम बंधे हैं। तो सर्वप्रथम ऋण देवताओं का होता है, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम किंकरो नरंच राजन सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम गतो मुतिंदम परिरत कृत्यम। यदि हम सिर्फ भौतिक जीवन के लिए पीछे ही जीना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से अदा करके या कुछ धर्म में बताए हुए मार्ग पर चलकर हम करना चाहते हैं, फिर भी हमारा ऋण देवताओं का रहता है, इसलिए देव यज्ञ करने की आवश्यकता हो जाती है। हाँ, ऋषि मुनियों जिन्होंने मार्ग बताए हैं तो उनका भी ऋण चढ़ता है, तो उनके लिए भी तो हमें करना पड़ता है, साधु संतों को बुलाना होता है, धर्मशाला बनानी पड़ती है, मंदिरें बनवाने पड़ते हैं कि धर्म का प्रदान, बहुत डोनेशन देने पड़ते हैं जबरदस्ती से, नहीं तो भगवान तो लेने वाले है ही, कम से कम कुछ ऋण तो अदा करो। नृणाम, हम लोग सोशल एनिमल है, सोसाइटी का भी ऋण रहता है, क्या अकेले अकेले जी नहीं पाते, देखो इकट्ठे हो गए हैं, अपना अपना समाज भी बनाते हैं, समाज होल बनाते हैं, ये करो वो करो, अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम बनाए रखो, तो ऋण किंकर, अपने घर नौकर चाकर रहते हैं, इनको भी पेमेंट करना पड़ता है, मुफ्त थोड़ा होता है, मुफ्त कुछ नहीं। यूं देखो तो ये सारा ऋण हमारे पर चढ़ा रहता है, लेकिन सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम, भगवान को सर्वात्मना भाव से जो शरण लेता है और उनके हित के लिए जीता है, तो क्या उसको कोई ऋण रहेगा? गतो मुकुंदम परिवृत्ति कृत्यम, इनको कोई ऋण नहीं, नहीं तो ऋण बंधन। चाहे कितना धार्मिकता का दिखाव करें, ऋणानुबंधन चालू रहता है, बहुत जटिलता, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंटरेक्शन, बनियागिरी मिलती है। चलो कैसे होती है, हम आए जगत में, आया अपना अरुण, तो वो कुछ साथ में लेकर आया है क्या? लेकिन उसके लिए सब तैयारी है ना, आपने नहीं बनाई, भगवान ने दी है, पहले ही सर्वप्रथम श्वास देने के लिए हवा तो है ना उसकी, वो सृष्टि में पैदा हुई, पानी है, खुराक है, सब कुछ, यानी कि जन्म होते हुए ऋण चालू हो जाता है। और क्या क्या करता है कि जो जो शक्तियां उसमें आती हैं, तो खाने पीने से भी तो शक्ति आती है, तो ये सब पैदा कौन करता है? बाजार में मिल जाती है इसलिए पैदा हो गई क्या? नहीं, भगवान कहते हैं अन्नाद भवन्ति भूतानि परजन्याद अन्न संभव यज्ञाद भवति परजन्य यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवम वित्ति ब्रह्माक्षरम समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम नित्यम ब्रह्म प्रतिष्ठितम। ये जो कर्म है ना, कर्म करने की शक्ति, ये ब्रह्म से पैदा हुई है, हमारी तो शक्ति है ही नहीं, हम उधार लेते हैं अपने सारे जीवन में करे कराए पर, या अपनी अकल से कमाने के लिए जो जो शक्तियां हैं वो तो पहले उधार दी है हमने, हमारी है ही कहां? ओ, हम पढ़ के हम इंजीनियर बन गए इसलिए हमारी अकल से हम काम करते हैं। अरे बाबा, ये पैसे कितने खर्च किए माँ बाप ने किए, तो क्या ये कोई मुफ्त थोड़े वो लाए थे? वी बोरोड ईच एंड एवरी स्पेक ऑफ एनर्जी फ्रॉम द मदर नेचर एंड हु शी बिलोंग्स टू के भगवान की राइट तो ये ऋण है और हम हर एक जन्म में 84 लाख योनि के बाद हमें ये मनुष्य जन्म प्राप्त होता है तो हर एक 84 लाख योनियों के ऋण गिने हैं कितना ऑब्लिगेशन होगा क्या हमने कभी ये ऋण अदा करने का प्रयत्न किया है और कितना किया हाँ इफ यू लेंड समबडी मनी यू मेक श्योर दैट ही गिव्स एवरी पेनी प्लस इंटरेस्ट राइट तब तो भगवान का तो कैपिटल ऋण तो बाकी है इंटरेस्ट कितना चढ़ गया होगा कभी दिया है किसी ने जो नहीं देना चाहता है तो चोर कहलाता है और भगवान कहते हैं कि ये शरीर तेरा है थोड़ा है तू समझ बैठा है हम कर्म करके इस शरीर का किराया दे सकते हैं लेकिन वो भगवान की तरफदारी वाला तो कर्म होना चाहिए कि इनको ये कर्म का फल इनको अर्पित करते करते हम यदि करें तो ऋण अदा हो सकता है लेकिन कभी हम अपने कर्म भी अर्पित नहीं करते खाना नहीं अर्पित करते तो कर्म कहां करते और गलत खाते हैं जो अर्पित नहीं किया जाता है हाँ हम गलत ही खाएंगे क्योंकि अर्पण तो, आप तो स्वीकारोगे ही नहीं आपको क्या आवश्यकता है लेकिन जब जबरदस्ती करके वो हम रेंट नहीं दे पाते ये मकान का तो दूसरा मकान लेना पड़ता है और वो अच्छा नहीं मिलेगा वो अच्छा नहीं मिलेगा तो जब हम एक के पीछे पड़ते हैं एक की शरणागत होकर तो ऋण तो माफ कर देते हैं दूसरे कोई माफ नहीं करने वाले सब हिसाब रोकड़ा चुकाना चाहिए और ये 12 महाजन हैं, जिसमें शिवजी आते हैं स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि वैयासिकी वयम और यमराज अंतिम अथॉरिटी रहती है 12वीं वो पूरे पूरा हिसाब ले लेते हैं कहते हैं कि जब आदमी जाता है तो यमराज के दरबार होकर जाना पड़ता है और वहां पूरे पूरा खाता वही देखते हैं अकाउंट्स चलो निकालो क्या उधार है क्या नहीं तो हम कभी देखने जावे अपना उधारी तो बहुत रेड होगा यानी कि सारा जीवन बैंकरप्सी में ही तो करवाया बैंकरप्ट हुए ना रेड में हो यानी बैंकरप्ट तो पराभवस्य बोध जातो जावन जिज्ञासम आत्मतत्वम जावत क्रिया तावत मनोभि कर्मात्मकम एव शरीर बंधन हमारा ये समस्या हमारी ये समस्या बनी रहती है कि एक हमारा पराभव यानी कि फेल्योर निश्चित होती है हाँ कहाँ किसने देखा कौन कहाँ जाता अरे पहले तो पराभव की बात कर बाद में देखा जाएगा कौन कहाँ जाता यू आर लूजिंग यू कांट विन दिस लाइफ जबरदस्ती से छोड़ना पड़ता है हम शरीर नहीं छोड़ना चाहते हैं लेकिन शरीर हमें छोड़ना चाहता है ये अनुभव किया है अपने हाथ में है ये मकान भी खींच लेते हैं जबरदस्ती से वी आर किक्ड आउट हम तो छोड़ना नहीं चाहते तो इसी तरह ये ऋणानुबंधन भगवान ही माफ कर सकते हैं जब भगवान को शरणागत होता है तो देवताओं नहीं माफ करेंगे वो तो कह के बहुत बनियागिरी कर चुका है मेरे साथ तो देवताओं हमें उत्तेजन देंगे कि जा भगवान के पास यदि ऋण चुकाना है तो ऐसे नहीं कि मुफ्त में मिलेगा $10 रखो और $1,000 की अपेक्षा करो, इनके पास ये नहीं है। हिसाब रोकड़ा, कोई ऐसे प्रलोभन में ले जावे तो उसे मना करना कि हमें जो है संतोष है, हा? हम भगवान कृष्ण को शरणागत हैं, हम इनकी भक्ति करके लिए इनको पुकारते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये ऋणानुबंधन से मुक्ति करेंगे, क्योंकि ये वास्तविक है, प्रकट अप्रकट से कोई कोई हम परेशान ना, सिर्फ जो वास्तविकता है उसे स्वीकारना, वो परम सत्य धर्म कहलाता है और उसकी ही जय होती है जो वास्तविक है। जो अवास्तविक है उसकी जय कभी होती नहीं। सत्यमेव जयते नानृतम, नानृतम यानी जो वास्तविक नहीं है उसकी कभी नहीं। रुतम मीन्स फैक्चुअल। तो अपने जीवन में हम लोग वास्तविक है तो वस्तु तत्व जानना, उसके परम सत्य जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। नहीं तो पशु तप भी जीवन जीते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन करते ही हैं, हमें इन चीजों में इतनी मेहनत करने की, इतना कंपटीशन करना और बिन लादेन से लड़ना, बहुत कठिनाइयों से जीवन जीना, इनसिक्योरिटी, ये कलयुग में हमें तो कोई फॉर्च्यून कहाँ मिलेगा। कलयुग में कोई किसी को सुख नहीं देगा, सबको परेशान करेगा, भक्तों को भी परेशान करेगा, लेकिन ये भक्त लोग परोल पे जा सकते हैं, नहीं तो जेल में सबड़ते ही रहेंगे। ये दुर्गा बड़ा जेल खाना है, वो अधिष्ठात्री है उसकी, और जिसको हम एक्सप्लोइट करके अपनी मनमानी करना चाहते हैं, क्या मां शेरनी नहीं बन सकती? तो फिर तब किसके पास जाएंगे? वो कहती है चल बड़ा हुआ है, एजुकेटेड हुआ, गो टू योर फादर, उसकी जिम्मेदारी है पहुंचानी। तो मनुष्य जीवन में कृष्ण भावनामृत का अंगीकार करके हम वास्तविकता के स्तर पे आए और बिकम इंटेलिजेंट इनफ टू पेव अवर पाथ। और ऐसे धर्म में हमने जितना हासिल किया वो हमारी परमानेंट एसेट बनी रहेगी, यानी कि ऋण कमती हो जाएगा। इतना ऋण कमती कर सकते हैं, हमें यहां ऋणी बनने से क्या फायदा? किसी का ऑब्लिगेशन स्वीकारने में कोई मजा होती है? वो कोसता रहता है ना, जिसने ऋण किया हो तो अपने ही घर में शत्रुवत रहता है, ही इज द एनिमी ऑफ द हाउस। इफ ए फादर इज डेटर, ऋण करता पिता शत्रु। यदि पिता ऋण करता है तो शत्रुवत समझो, कि सारी जिम्मेदारी बच्चों पर आ जाती है। तो देवताओं हमें योग्य व्यवस्थाएं प्रदान करते हैं, लेकिन हम अतृप्त इच्छाओं के कारण इनको परेशान करते हैं, तो क्या किसको फायदा? तो इनको अपनी मूल स्थिति में इनका आदर सत्कार इत्यादि हो, लेकिन वो स्वयं भोगी नहीं, इनको भोग नहीं चढ़ता, इनको प्रसाद चढ़ता, भोग नहीं चढ़ता। यानी कि सर्वप्रथम भगवान को भोग अर्पित होता है और बाद में शिवजी और दुर्गा प्रसाद प्राप्त करते हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं करते। हम ना समझ होकर ऐसी मान्यता में यदि करें तो वो किसी को प्रसन्न नहीं कर सकती। देवताएं यानी कि शिव स्वयं प्रसन्न नहीं होंगे। यदि कोई ये समझता है कि ये लोग अपने लिए ही नहीं स्वीकारते हैं क्योंकि भगवान के सेवक हैं, तो ये भगवान को अर्पित कर, तो आपको क्यों नहीं सिखाएंगे कि पहले भगवान को अर्पित करो, सही ना? तो ये समझने की आवश्यकता होती है कि भगवान बीच में होने ही चाहिए। कई बार लोग कुल देवताओं की बात करते हैं, अपने परिवार में अपने इष्ट देव की बातें करते हैं कि इष्ट यानी कि हमारे हमारा अच्छा करने वाला, इष्ट यानी अच्छा करने वाला, हमारे हित में क्या है वो जब देखते रहते तो हम पारिवारिक हित देखते हैं, हम सांसारिक हित देखते हैं, हम स्वयं के शारीरिक हित देखते हैं, उसके लिए इष्ट देवता तो वैसे अपने शरीर में भी तो वही इष्ट हैं, लेकिन शरीर में भी 33 करोड़ देवताओं का तो वास होता है, उसका क्या? और हर एक इंद्रियों के कंट्रोल करने में वही इनका प्रभाव होता है हर एक के शरीर में, क्योंकि ये भी एक दुनिया है, शरीर भी दुनिया है, तो दुनिया की रचना में देवताओं और देवताओं के विस्तारों का भी बहुत महत्व का स्थान होता है, लेकिन ये भौतिक है, हम स्वयं भौतिक नहीं, आत्मा भौतिक नहीं होती, मटेरियल नहीं होती, स्पिरिचुअल होती है। तो दोनों में अंतर होता है, स्पिरिचुअल पोर्शन इज कनेक्टेड विद कृष्णा, मटेरियल पोर्शन इज कमिंग स्टेइंग फॉर सम टाइम एंड गोइंग एंड दैट इज दुर्गास फंक्शन। हम इनकी अमान्या में काम करते रहे जिसके द्वारा हम भगवान की ओर पहुंच सके, ये भाव होना चाहिए, नहीं कि स्वतंत्र रूप से हम ना समझ होकर देवी उपासना शिव उपासना करके हम इसके पीछे ये संकल्प रखते हैं, ये विकल्प रखते हैं, ये करते हैं, ना ना, ये सब बनियागिरी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिड नॉट हैव एसेट इवन ऑफ अवर ओन, हाउ कैन वी बिकम मर्चेंट इवन? उधार करके थोड़ी हम व्यापारी बन सकते हैं उधारी करके, ये तो जिंदगी भर का उधार है, और कृष्ण नोज दैट ही इज अनेबल टू गो टू पे, बट येट ही इज अ वेरी काइंड फादर। अपना ऑब्लिगेशन का, इफ यू वॉन्ट टू रिटर्न टू योर फादर देन यू हैव टू सी वॉट इज हिज डिजायर, हाउ ही कैन ऑब्सोल्व माई डेट्स इंडेटेडनेस। ये भक्ति का विषय है, ये भगवान का विषय है और ये भक्त का विषय है, हाउ टू प्लीज द सुप्रीम। और इसीलिए सारे वेद में ये कहा है कि एको बहुश्याम, एक में से अनेक हुए हैं, और ये एक को पकड़ के इनको संतुष्ट करना ही एकमात्र मनुष्य की जिम्मेदारी है, इनको एक को ही जानना मनुष्य की जिम्मेदारी है। एक तो सर्वमिदं खल्वं ब्रह्म और वासुदेवं सर्वमिति, दोनों में अंतर नहीं करता, जो कुछ है ये ब्रह्मन है और जो कुछ है भगवान श्री कृष्ण वासुदेव है, ऐसा भगवद गीता में कहा है। इसलिए शंकराचार्य रामानुजाचार्य मध्वाचार्य इत्यादि बहुत सारे आचार्यों ने जो अपने हिंदू धर्म के प्रणेता हैं, भागवत धर्म, इन्होंने कृष्ण भगवान की सर्वश्रेष्ठता सिद्ध करके ये कहा है कि यदि कोई एक शास्त्र हो तो गीता होनी चाहिए, भगवत गीता। एकम शास्त्रम गीतम एकम, एको देव देव की पुत्र एव, एको मंत्रस्य तस्य नामानि कर्मात्म अप्यच देवस्य सेवा, भगवान की प्रीति के लिए ही एकमात्र कर्म हो जिसे भक्ति कहते हैं, वो देव की सेवा यानी कि अवर सर्विस। हाँ? एक ही एक पुस्तक हो तो भगवद गीता, एक देव हो तो कृष्ण भगवान, एक मंत्र हो तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक ही धर्म का व्यवसाय हो तो वो विशुद्ध भक्ति और भगवान। जय। अभी बोलो किसी को कोई प्रश्न है।
तो हमको देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए फिर?
अलग से नहीं करनी चाहिए, भगवान की करो, देवताओं को साक्षी में रखो।
तो उनको भगवान जी को ऊपर बैठा दें, उनको देवताओं को नीचे रखें थोड़ा सा।
क्या सुपरमार्केट है क्या?
नहीं, आई मीन टेंपल के अंदर।
हाँ, लेकिन बहुत सारे डुप्लीकेट हो तो हटा देना, बहुत डुप्लीकेट नहीं रखना। देवताओं के भी जो जो कोई आता है प्रेजेंट दे जाता है, कहाँ रखे? तो मंदिर में।
हाँ, तो
नहीं,
बहुत सारे हैं मतलब।
लेकिन पूजा किसकी करोगे? योर अटेंशन विल बी डिवाइडेड। हाँ, यदि शोकेस में रखो या आप भी किसी को गिफ्ट में दिया करो। हाँ, पूजा एक की करनी है। हाँ, अनेक की करने से कोई फायदा नहीं है। इफ यू गिव योर टैक्स इनटू सेंट्रल ट्रेजरी, ऑल द डिपार्टमेंट्स विल बी गेटिंग इट। पेड़ की जड़ में पानी डालोगे तो सारी शाखाएं पत्ते सब जगह फूल तक पहुंच जाएगा। पेट में खाना डालोगे तो सारे शरीर में उसका संचार होगा। यदि हाथ कहता है मैं लाता हूं ना, मैं खाना मैं ही खाऊंगा, तो दिस इज ए डिजीज कंडीशन। देवताओं कभी ये सोचते नहीं कि मैं देता हूं इसे मुझे देना चाहिए। ऐसे तो इंद्र का भी काफी तमाशा हो गया था। इंद्र सोचता है कि आई एम द सप्लायर फॉर द रेन सो द फूड कैन ग्रो, आई एम द लॉर्ड एंड मास्टर। तब भगवान श्री कृष्ण आए, गोवर्धन उठाया, इंद्र का गर्व का खंडन कर दिया कि तू कुछ नहीं है। तब वो अक्कल ठिकाने लाकर आया, माफी मांगी। तो देवता स्वयं मांगते नहीं, न मांगना चाहिए। यदि भगवान आपके पास नहीं है, भगवान की मान्यता नहीं है, भगवान को उन्हें जानते ही नहीं, तो ठीक है देवता की उपासना, लेकिन वो अकलमंदी तो नहीं कहलाती। हमें जानने की आवश्यकता होनी चाहिए कि क्या हम सही कर रहे हैं, सही ना? लेकिन भगवान स्वयं बताते हैं और समझाते हैं, और गुरु की आवश्यकता होती है तो गुरु तो भगवान के संबंध में नहीं होते हैं। देवताओं के संबंध में कोई गुरु की आवश्यकता कहां बताई? कोई नहीं कहता। तस्मात् गुरुम प्रपत्यते जिज्ञासुम श्रेय उत्तमम्, शास्त्रे परे च निष्णात्रम ब्रह्मणि सम उपाश्रयम्। गुरु यदि जिज्ञासा हो परम सत्य के जानने के लिए तो गुरु की आवश्यकता है, और ऐसे गुरु शास्त्रे परे च निष्णातम, he is expert in the verdict of, or the conclusion of our Vedas, जो सारा ये बताया है उपासना कांड ज्ञान कांड, तो इसका conclusion ये गुरु के पास है। और ब्रह्मणि उपसमाशयम, ये भगवान श्री कृष्ण के परम तत्व पर पूर्ण आश्रित होता है। तो आपको देवताओं की शरण में जाने के लिए क्यों कहेगा? सदगुरु, सत मीन्स इटर्नल, परम सत्य के बारे में गुरु कहते तो सो सदगुरु कहलाते हैं, और परम सत्य पर ब्रह्म भगवान स्वयं होते हैं।
शरण में जाने के लिए क्या?
सेवा, बिना सेवा शरण की मान्यता रखना नहीं। किसकी सेवा? किसी और की नहीं, एक की, भगवान।
तो ड्यू रिस्पेक्ट आप बोल रहे हैं अगर कृष्ण भगवान सुप्रीम पावर है, अगर और कोई धर्म में जाए,
डू यू वॉन्ट मी टू प्रूव इट?
नहीं, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ।
अगर नहीं,
आपसे क्वेश्चन,
हाँ ना, यू आर प्रपोजिशन।
मुस्लिम्स हैं तो बोलेंगे अल्लाह सुप्रीम पावर है, क्रिश्चियन हैं तो बोलेंगे जीसस क्राइस्ट सुप्रीम पावर है, तो
कहाँ भेद हुआ?
किस मतलब इसका रीजनिंग क्या है कि कृष्णा ही सुप्रीम पावर है?
इफ यू रीड भगवद गीता, हाँ, तो उसमें आप आत्मा, परमात्मा यानि कि स्पिरिचुअल एंटायर मटेरियल का ही ज्ञान प्राप्त करोगे, न तो हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन का कोई ज्ञान प्राप्त करोगे। हिंदू शब्द है ही नहीं उसमें, अपने कोई भी शास्त्र में। अभी जो मुस्लिम हैं, जो अल्लाह की बात कर रहे हैं, तो अल्लाह के अव्यक्त रूप में मानते हैं ना, सही? क्रिश्चियन है तो व्यक्त रूप में मानते हैं, फिर भी इनको व्यक्तित्व का पूर्ण परिचय वहां नहीं मिलता है। तो द फायर इन द बुश वॉज देयर एक्सप्लेनेशन, और ही इज द ओल्डेस्ट, सो दे थिंक गॉड इज एन ओल्ड फेलो, राइट? दाढ़ी वाला कुछ बताते हैं। अब आप देखोगे कि इन लोगों के पास फिलसफी कहां है? पहले थियरी तो होनी चाहिए कोई, और थियरी को बाद में प्रैक्टिकली पुरवार करने की कोई पद्धति होनी चाहिए। जो भी है, स्थल काल और पात्र के अनुसार इन लोगों को भी शिक्षा दी गई है। अब अपने वैदिक धर्म की बात करें, तो वैदिक धर्म को हिंदू धर्म किसने बनाया? ना, मुस्लिमों। मुसलमान लोग जब भारत देश पर चढ़ाई करने आए तो सिंधु रिवर क्रॉस करनी पड़ती थी, वो लोग इसे हिंदू कहते थे। तो जो संस्कृति सिंधु नदी की उस पार पल रही थी, वो कल्चर को उन लोगों ने हिंदू कहा। इसलिए हिंदू शब्द अपने में है ही नहीं, तो गर्व की ही क्या करें? गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व किसका करें? हिंदू क्या है जानते ही नहीं। अरे हम भी तो मेंबर हैं विश्व हिंदू परिषद के, हैं, लेकिन हम तो सीधा कहते हैं कि ये किसी ने नाम थोपा है, इसे क्या हम हिंदू हैं? तो देश काल और पात्र मुजब कुछ न कुछ सूचनाएं तो अवश्य प्राप्त होती है, लेकिन ये अपने वैदिक धर्म के विरुद्ध कोई सूचना नहीं मिलती। अपभ्रंश हो सकता है, तो जैसे हमने हिंदू धर्म का जब ठेका ले लिया है तो हमने इसमें मानवीय तत्व जोड़ दिया, इन अपना दैहिक भाव स्थल काल और पात्र का, कि ये लोकेशन पर ये हुआ है, ये लोकेशन, तो फिजिकल कन्फर्मिटी में हम कहते हैं। तो इसलिए कृष्ण को हम हिंदू भगवान मानते हैं, लेकिन कृष्ण कभी हिंदू थे? भगवान कभी हिंदू होते हैं? भगवान कभी मुसलमान होते हैं? भगवान कभी क्रिश्चियन होते हैं? नहीं। इनको क्रिश्चियन हिंदू बनाने वाला कौन है? मनुष्य। भगवान हमें बनाता है और हम भगवान को बनाते हैं, दोनों में सत्य क्या है बताओ? हम भगवान को बना सकते हैं? पर बनाने की चेष्टा कर रहे हैं, भगवान हिंदू है। तो आपने ऐसा ही प्रश्न किया कि ये लोग क्रिश्चियन है, ये लोग मुसलमान है, ये हम हिंदू कहते, ये कृष्ण ही भगवान क्यों? अब भगवान होने के लिए क्या होना चाहिए? अपने शास्त्रकार और जो बड़े बड़े प्रोफेसर आचार्य इत्यादि हैं, इन्होंने कहा कि भगवान यानी कि ये जो शब्द है, द भग यानी ऐश्वर्य, वान यानी कि वन हु पजेसिस यानी कि उसको धराना, वान होना। तो पराशर मुनि की ये व्याख्या है कि षडैश्वर्य पूर्ण जो होता है, छह ऐश्वर्यों से इसमें सब कुछ आ जाएगा, हा? उसको ही भगवान कह सकते हैं, हा? और ऐश्वर्य कौन है? तो कहते सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, सर्व सुंदर सौंदर्यवान। तीसरा है ज्ञानवान, पूर्ण ज्ञान। चौथा बताया गया है कि ख्याति, सर्व ख्याति। अरे भाई धनवान, पांच छ, और छठा है त्यागवान। ये छह छह ऐश्वर्यों के लिए हम यत्किंचित हम भी कोशिश करते हैं कि हमारे पास कुछ पैसे आ जाए, हम धनवान बन जाएं। कौन बनेगा करोड़पति? क्योंकि हम अंश हैं ना। पहले तो लक्षाधिपति की बात करते थे, अभी जमाना बदल गया है, ब्लैक मनी बहुत आ गए हैं, तो करोड़पति की बात करो। इतने लाख से करोड़ होना यानी कि दस गुना होना ना, या सौ गुना होना, सॉरी सौ गुना होना, एक लाख से सौ गुना होना करोड़पति कहलाता है। यानी कि इतना ब्लैक मनी बढ़ गया, सौ गुना हो गया ब्लैक मनी। एक अच्छी कमाई, एक रुपये की जब हम अपनी नेकी की कमाई करते हैं तो उसके बजाय हमें सौ गुना अनीति की कमाई प्राप्त होती है। तो ये धनवान बनने जब भावना है, ये ऐश्वर्य प्राप्त करना है। लेकिन ये सारे सौंदर्य के मालिक तो एक ही होते हैं, सारी शक्तियों के मालिक एक होते हैं, तो उसे भगवान कहा जाता है। रजनीश के पास 93 रोल्स रॉयस आ गई तो क्या वो भगवान कहलाता था? हाँ, मूर्ख लोग और स्वयं भी कहलाता था कि मैं भगवान। ऐसे तो बाजार में बहुत भगवान मिलेंगे, लेकिन कृष्ण भगवान ऐसे नहीं बताए जाते। भगवद गीता पढ़िए, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। ये तो न तो बाइबल में कहा है, न तो कुरान में कहा है। कुरान में भगवान की बातें आती है और उसके मैसेंजर मोहम्मद के द्वारा आती है, और जीसस ऑफ क्राइस्ट मीन्स द सन ऑफ गॉड ही इज टीचिंग अबाउट दिस ओपुलेंसेस ऑफ द लॉ। तो हमें जो उसके सत्य के रूप में जो बात करनी है तो उसकी क्वालिटेटिवनेस समझनी है। व्हाई कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, तो उसके लिए शास्त्र में क्या व्यवस्था है, पूरा प्रमाण क्या है वो देखना। और बड़े बड़े आचार्यों ने ये सिद्ध करके कैसे बताया, तो उसकी सारी सिस्टम है। ऐसे नहीं कि मैं मानूं इसे भगवान। हमारा ये निगेशनिज्म का जो है ना, तो अज्ञानता के कारण है, और ईर्ष्या अज्ञानता से पैदा होती है, ये सर्वप्रथम हमने कहा। तो हिंदू मुसलमान और ईसाई धर्म मनुष्य ने बनाए हैं, इसलिए बहुत सारा भेद होगा, लेकिन धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान स्वयं हाँ जो हो वो अपने नियमों बना लेते हैं और टू फॉलो देम इज द बेस्ट ऑक्यूपेशन फॉर ह्यूमैनिटी एट लार्ज. इनडायरेक्ट क्यों करें, डायरेक्ट करो. अपने पास डायरेक्ट है एंड दे आर शोइंग सम इनडायरेक्ट वे. सा इतना भेद है. यदि भेद हो तो यही एकमात्र होगा, लेकिन जो तत्व ये लोग नकारते नहीं. बुद्धिज्म में तो एथिज्म आ गया, लेकिन स्वयं भगवान बुद्ध बन करके आए. विष्णु का अवतार मानते हैं और कैसे वो भी बताया गया. तो भगवान नास्तिकता फैलाने आए. हाँ, नास्तिकता की आवश्यकता थी उस समय, इसीलिए उन्होंने की, क्योंकि वेदों का बहुत भारी अपमान कर रहे थे ब्राह्मण वर्ग. ये 2,500 साल पहले की तो बात है. निंदसि यज्ञ विधेयः श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशु घातम केशव द्रीता बुद्ध शरीर जय जगदीश. हे कृष्ण, यू एज्यूम द फॉर्म ऑफ बुद्ध. व्हाई? बिकॉज हाई एशलॉन द ब्राह्मण दे वेर अब्यूजिंग द यज्ञस, डिफाइलिंग द यज्ञस बाय सेक्रीफाइसिंग इनोसेंट एनिमल्स फॉर द टेस्ट ऑफ द टंग. सो यू केम एंड एस्टैब्लिश द एथिज्म. सदय हृदय दर्शित पशुघातम. यू बिकेम सो कंपेशनेट टू द एनिमल्स दैट यू एग्जीक्यूटेड अहिंसा एंड टॉट एवरी वन. सो वी वर्शिप कृष्ण बिकॉज ही एज्यूम द फॉर्म. अवतारी एक होता है, अवतार अनेक होते हैं. तो हु डिसेंड्स, तो उसकी व्याख्या भी समझनी चाहिए. कोई अव्यक्त इज नॉट डिसेंडिंग, व्यक्ति है और परम व्यक्तित्व है. तो भगवदगीता में इसकी सारी स्पष्टता हुई है. भगवान का ख्याल स्वयं भगवान ही दे सकते हैं. और इनके विशुद्ध भक्त इनका समझ करके, अपना समझ करके नहीं, इनका समझ करके ही हमें सिखा सकते हैं. सो दैट्स व्हाई इट इज यूनिवर्सल, बिकॉज इट इज नॉट पर्टेनिंग टू द टाइम प्लेस और इवन द पीपल. ही touches the soul aspect, the spiritual aspect, and he teaches. Krishna Bhagwan ka sara jo teaching hai, to wo adhyatma ka hai. Kisi avatar ne aisa teach nahi kiya. Adhyatma ka koi nahi teach karta. Na to Shivji ne teach kiya hai, na to Ramchandra aaye. रामचंद्र जी ने तो अद्वैत यानी कि जो निर्गुण तत्व पर वशिष्ठ मुनि के द्वारा उनको सिखाया गया निर्गुण तत्व पर, और स्वयं परम पुरुष मर्यादा लेकर आए हैं. इसलिए निर्गुण तत्व जानने की आवश्यकता है, लेकिन उसका बहुत गहरा अभ्यास करने की कोई आवश्यकता नहीं बताई गई. ये कलयुग है, छोटी सी उम्र में हम हासिल कर जाएं तो मनुष्य जीवन सफल होता है. सो बाय ऑल ऑड्स अगेंस्ट अस, चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्णा महामंत्र दैट डिलीवर्स अस फ्रॉम ऑल द इग्नोरेंस एंड एस्टैब्लिशेस ऑन द स्पिरिचुअल रियलिटी प्लेटफॉर्म इज इजीली अवेलेबल.
हरे कृष्ण मंत्र के साथ हरे राम
का उच्चारण. अगेन, हु इज राम? व्हाट इज मीनिंग बाय राम? नो, कितने राम हैं? बलराम भी तो राम था, रामचंद्र भी तो राम थे, परशुराम भी तो राम थे, हमारे नित्यानंद राम भी राम तत्व। रमा शक्ति जो भगवान की अंतरंग शक्ति है, जो नियति है, जो आनंद की शक्ति लादिनी स्वरूप में प्रकट होती है, भगवान की सारी कार्यवाही नियंत्रण करने वाली इनकी आह्लादिनी शक्ति रमा हाँ? और स्वयं उसमें आनंद लेते हैं, इसलिए वो राम कहलाते हैं। और योगियों भी ध्यान लगाकर अपने निजानंद में खेलना चाहते हैं, क्योंकि आत्मा भी भगवान का अंश है, इसलिए सच्चित आनंद का अंश कहलाता है। तो वो आनंद तत्व के लिए तो हम तलस रहे हैं। यहां भौतिक दुनिया में जो हम परछाई रूप आनंद हम एंटरटेनमेंट मानते हैं, लेकिन न तो एंटरटेनमेंट हमें वास्तविक आनंद देता है, न कुछ नहीं, सब उल्टा परिणाम करता है। तो भगवान की अंतरंग शक्ति जो लादिनी शक्ति है, जिसका विशुद्ध स्वरूप राधा है, वो भगवान की आनंद की शक्ति कहलाती है। तो रमा उसको लागू होता है। जब राधा रानी को बुलाते हैं तो मंत्रों द्वारा श्री राम राधिकाय नमः कहना है। वो रामचंद्र जी के साथ निस्बत नहीं है, लेकिन वही राधा का विस्तार सीता देवी कहलाती है, लेकिन मर्यादा में तब भगवान पुरुषोत्तम कहलाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम और पूर्ण पुरुषोत्तम, पूर्ण में बहुत सारी मर्यादा आ जाती है, यानी कि पूर्ण चरित्र भगवान का यदि जानना है तो भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में आपको मिलेगा, और वो भी वृंदावन में मिलेगा, वृंदावन के बाहर नहीं मिलेगा। मथुरा द्वारका में भी तो लीला की थी, लेकिन पूर्ण चरित्र में तो सर्वश्रेष्ठ वृंदावन। दूसरी जगह भगवान के शक्ति का प्रदर्शन होता है, यानी कि बहुत सारे असुरों को मारे, ये करे वो करा तो भगवान की ये छह ऐश्वर्यों का प्रदर्शन होता है। लक्ष्मीपति यानी कि ऐश्वर्यवान होता है तो, लेकिन वृंदावन में तो सबसे बड़ा महत्व का उनका जो प्रेम का सारा प्रदर्शन और सारे रसों का प्रदर्शन होता है। रामचंद्र जी और सीता मर्यादा में और एक पत्नी व्रत में ही मर्यादित रूप से प्रदर्शित किए, जो मनुष्य के लिए उत्तम है अपनी मर्यादा रखने के लिए। लेकिन यदि पूर्णता का अभ्यास में हमें भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण चरित्र प्राप्त होता है, वो अभ्यास, इसलिए भगवान कृष्ण कहलाते हैं, रामचंद्र जी इनका अवतार कहलाते हैं, ये श्रीमद् भागवत कहता है। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन, ये ब्रह्म संहिता में भी कहते हैं, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन, रामचंद्र इत्यादि अवतार भगवान की अंश और कला, कला मीन्स एक्सपांशन, फॉर हूज एक्सपांशन, नानावतारम अकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परम उपमानयो गोविंदमादि पुरुषम्। इसी तरह ऐसे ग्रेडेशन होते हैं, वो आध्यात्मिक ग्रेडेशन होते हैं, भौतिक ग्रेडेशन नहीं, इवेल्युएशन करो तो पूर्ण चरित्र आपको स्पिरिचुअली कहां प्राप्त होगा, किसके चरित्र में, कृष्ण के चरित्र। तो ये सर्वश्रेष्ठता बताई जाती है, उसका हम ये स्टोरी जानकर अभ्यास नहीं कर सकते, सही ना? नहीं तो ये शास्त्र ऐसे क्यों कहता, क्योंकि रमंती जोगिनः सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नाशो परब्रह्म अभिधीयते। राम शब्द परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण का आनंददायक वाचक नाम कहलाता है, और वो प्राप्त करने के लिए, यानी कि जिसकी पुष्टि प्रेम में होती है, हा? आनंद बिना प्रेम प्राप्त नहीं होगा. अनलेस देर इज एन एलिमेंट ऑफ लव यू वॉन्ट फील द प्लेजर. तो ये द टोटल एम्बोडीमेंट ऑफ दिस लादिनी पोटेंसी इज राधारान एंड शी नोज हाउ टू सर्व हिम द बेस्ट. दैट इज ऑन द स्पिरिचुअल लेवल, नॉट ऑन मटीरियल लेवल. कि ये कोई लड़की थी और ये लड़का था, ना ना. दैट्स वाई कृष्ण से अवजानंती माम मूढ़ा फूल्स थिंक दैट आई एम वन ऑफ देम, नॉट नोइंग माई सुप्रीम नेचर विच इज डिवाइन. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल वट आर वी स्टडिंग एंड वट आर वी टॉकिंग एंड वट वी अंडरस्टैंड. इफ वी आर कन्फ्यूज देन लेट्स टेक रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एंड रिस्पॉन्ड. गुरु की तो यही सारी जिम्मेदारियां होती है. साधु लोग आते हैं बस कथा करके चले जाते हैं, उसमें हमें क्या फायदा हुआ? फायदा होना चाहिए. बड़े बड़े आयोजन करते हैं लेकिन हमें परम सत्य का कोई परिचय नहीं होता. इट्स बेटर यू नो वी शुड नॉट एंगेज इन सच एक्टिविटी, रादर वी शुड बिकम अवेलेबल वन टू वन बेसिस एंड बिकम कन्वर्सेंट विद द ट्रूथ अबाउट अवर सेल्फ, द सेल्फ अबाउट द सुप्रीम. तो आनंददायक वाचक नाम को राम कहते हैं और ये भगवान के आनंद को बढ़ाने के लिए बहुत प्रयुक्तियां करते रहते हैं. इसीलिए बलराम आए हैं, इसलिए बलराम भी आए. ही वॉज हिज एल्डर ब्रदर बट ही वॉज सबसर्वियंट टू द डिजायर ऑफ द लॉर्ड कृष्ण. दिस आर ऑल स्पिरिचुअल अरेंजमेंट इन ऑर्डर टू मेक अस अंडरस्टैंड कि अपना भी कोई स्वरूप था भगवान के साथ एक समय, जहां हम ईर्ष्या से हमने वो त्याग दिया. यस भैया, अंडे में से मुर्गी आई और मुर्गे में से अंडा आया, बताओ. शास्त्र जो कहता है हम कह देंगे. वैसे तो विष्णु त्रिणी रूपाणी, विष्णु के तीन रूप होते हैं, एक नहीं. कौन से विष्णु की बात कर रहे हैं? कौन से विष्णु में से आया? आपने देखा होगा पर फिर भी समझ नहीं पाते होंगे. विष्णु के खड़ा कमल पे खड़ा रूप देखा होगा. विष्णु को श्वेत द्वीप में शेष शैया पर सोए हुए भी देखा होगा और लक्ष्मी भी चरण दबा देती है और उसकी नाभि में से कमल निकलता है और ब्रह्मा जी प्रकट होते, वो भी शायद देखा होगा. और इन सब चीजों के बिना भी भगवान विष्णु वैसे लेटे हुए दिखाई देते हैं. ये तीन विष्णु, एक को कारणोदक्षाय विष्णु कहते हैं, दूसरे को गर्भोदक्षाय विष्णु कहते हैं, तीसरे को क्षीरोदक्षाय विष्णु कहते हैं, जो क्षीर समुद्र के किनारे. और ये सारे चतुर्भुज हैं, चार हाथ वाले हैं, राइट. और ये तो भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति के लिए निमित्त बनकर रहा है, लेकिन उनका मूल रूप कहां से आए भाई? तो क्योंकि वैकुंठ से है. नारायण भी वहां चतुर्भुज है, वो भी विष्णु रूप कहलाते हैं. लेकिन ऐसे तो कितने अगणित वैकुंठ लोक हैं, जैसे अपने यूनिवर्सिस हैं ना, इसमें पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इत्यादि है, पंचमहाभूत है. वैसे वैकुंठ में तो स्वयं संचालित लोक है. और ये वैकुंठ की सृष्टि अपनी भौतिक प्रकट सृष्टि जो है उनसे से टू थर्ड बिग बताई गई है. ये तो अपनी वन थर्ड ही तो टू थर्ड आध्यात्मिक सृष्टि में वैकुंठ, और हरेक वैकुंठ प्लेनेट में भगवान विष्णु के नाम होते हैं. कि ये संचालक है वहां, और वहां चार प्रकार के मुक्ति वाले जीव जो नित्य मुक्त जीव है वहां बस रहे हैं इनकी सेवा में, राइट। और ये चार प्रकार के जो जीव हैं, इनको इच्छा पूर्ण और संचालन करने के लिए वहां भी विष्णु के चार रूप बताए जाते हैं। फिर तो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में जाने जाते हैं। और इन बीच में, इतने सारे वैकुंठ लोक के बीच में, गोलोक वृंदावन नाम का, जहां कृष्ण स्वयं विराजमान होते हैं राधा रानी के साथ, तो ये सर्वश्रेष्ठ स्थिति बताई जाती है। हमारे लिए इसका अनुभव तो ब्रह्मा जी के मार्गदर्शन द्वारा ही होता है। तो ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं कि गोलोक धाम निज धाम तले तस्य देवी महेश हरि धामासु देशु देशु ते ते प्रभव निचया विहिताश्च येन गोविंद आदि पुरुषम महा बजाने। गोलोक धाम भगवान श्री कृष्ण का धाम, उसके नीचे देवी धाम, महेश धाम, हरि धाम यानी कि विष्णु धाम प्रसरे हैं। तो भौतिक सृष्टि के लिए तीन विष्णु आते हैं, लेकिन ये तीन विष्णु की उत्पत्ति भी भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है, लेकिन एक्सपांडेड। ये सब एक्सपांशन करके ही तो परमात्मा के रूप में, यानी कि क्षीरुद अक्षय विष्णु तीसरे विष्णु है, तो हरेक के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है, तो वो तीसरे नंबर के विष्णु का रूपांतर बताया गया, एक्सपांशन तीसरे विष्णु। तभी बताओ कौन कहां से आया। एक को पकड़ो सारा हो जाएगा, और कृष्ण को पकड़ो। नहीं, वो जब अवतारी जब अवतार लेकर आएगा स्वयं अपने आप को, नहीं तो अंश और कला के रूप में आएगा, लेकिन स्वयं जैसे है वैसे आने वाला तो अवतारी ही होता है ना। तो वो जब आता है तो ऊपर से तो आता है, गोलोक वृंदावन लेकर आता है, और श्वेत द्वीप भी जो जहां विष्णु विराजमान है उसे श्वेत, वो भी गोलोक वृंदावन जैसी उसकी रचना है। तो जब when he descends then he comes through those three Vishnus and ultimately as Paramatma within one's own self. अब देखो कृष्ण भगवान का जन्म कैसे हुआ, जानते हो स्टोरी कहां हुआ? जेल में। जेल में कैसे हुआ? देवकी ने प्रसूति की,
चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए।
अरे भाई एकदम खड़े हो गए क्या?
उनके कहने से फिर उनने बालक रूप रख
लिया। नहीं नहीं, उसे आगे पहले कुछ आता है। जब भगवान डिसेंट होने का समय आया तो वहां बताया गया कि वसुदेव और देवकी की तपश्चर्या तीन तीन बार कर चुके थे पहले, ये तीसरी बार हो रही है। तो इनकी तपश्चर्या के कारण भगवान वसुदेव के हृदय में प्रकट हुए परमात्मा के रूप में। वसुदेव के हृदय में भगवान स्थापित हुए परमात्मा कृष्ण मूल रूप में, और वसुदेव ने देवकी को दीक्षित किया, दीक्षा दी जेल में, यानी कि भगवान के स्वरूप को देवकी के हृदय में स्थापित किया है, गर्भ में स्थापित नहीं किया। जैसे भगवान देवकी के हृदय में स्थापित हुए तब वो इतनी तेजस्विनी बन गई कि देवताओं लोग ये समय की राह देख रहे हैं, तो उन्होंने समझा के अवश्य अब भगवान देवकी के पेट में आश्रय ले रहे हैं, लेकिन देवकी ने प्रसूति की नहीं की। वही भगवान चतुर्भुज रूप में विष्णु के रूप में पहले प्रकट हुए, राइट। तो देवकी ने कहा कि अरे आप तो पीताम्बरधारी शंख चक्र गदापद्म, हम तो जानते हैं आपको, हमने आपको कहां बुलाया, हम जानते हैं आप भगवान हो हा? लेकिन ये विष्णु के रूप में आप कहां से लीला करोगे, आपकी जो गोलोक वृंदावन की लीला है जो अनंत उसे जाहिर करने के लिए तो आपको बुलाया था। तो कहते कि मैं जेल में कैसे लीला करूं, तो कहा कि हमें ले जाओ लेकिन आप पड़े रहो। माँ बाप होते ही तीन तीन बार भगवान ने इन लोगों की जो वात्सल्य भावना को इतना चुरा किया है, भक्तों को देखो कितना संतापते हैं, लेकिन ये भक्ति है, भक्त कभी डरता नहीं। तो देवकी और वसुदेव भगवान के माँ बाप बने, भक्त हैं, भक्तों के घर आश्रय लेते हैं, क्योंकि भक्त लोग भक्ति करना जानते हैं और भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ऐसे विशिष्ट लीला करने आते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ हम तैयार हैं, आपका विरह और हम झेलने के लिए तैयार हैं, आप जाओ और दुनिया को बताओ आपकी विशुद्ध लीला। तो भगवान हृदय में प्रकट होते हैं, पेट में प्रकट नहीं होते। हृदय अपना मर्मस्थान होता है, जहां प्रेम उद्भवता है, जहां हम आत्मा विराजमान है और परमात्मा भी विराजमान है, लेकिन वो व्यवहार हम निगेट करते हैं, नकारते हैं जानबूझकर, और अव्यक्त के गड़बड़ियों में हम उलझे रहते हैं। तो श्री प्रभुपाद ने बहुत विशिष्ट रूप से ये सारा बंडा फोड़ा है। आप लोग प्रभुपाद के भगवत गीता श्रीमद् भागवत से लाभान्वित हो तो अवश्य आपका जीवन धन्य बन जाएगा, सारे संशय नष्ट होंगे, सारी ग्रंथियां भी छिन्न भिन्न हो जाएगी मिसकंसेप्शन की, और क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, आपके कर्म भी हम बंधन करता नहीं रहेंगे। जैसे चने को भूनते अंकुर फूटना ही बंद हो जाता है, वैसे कर्म करते उसके अंकुर नहीं फूटेंगे, कर्म बीज आपको सताएंगे नहीं। तद्दृष्ट एव आत्मनीश्वरे, इसी हालत में आपकी भक्ति आपको भगवान का दर्शन कराएगी, लेकिन उसे पहले आपका दर्शन कराएगी, आत्मा का और ईश्वर का, दोनों का दर्शन कराएगी।